साधन तुम्हारे को बतलाई से जो विपरीत है वो ज्ञान है। मानी स्वयं गंभीर स्वयं हिंसा शांति राजन आचार्य उपासना सोतों तेरे मात्र निग्रह। बीस जो ज्ञान के जो साधन बतलाए प्रकार बतलाए एक प्रकार से उसमें एक ही श्लोक में नौ बात बतलाई। ये कहा कि अमानी स्व माने मान का न जाना, मान जाना जो है वो ज्ञान है, ज्ञान में हेतु है और मान का न जाना है वो ज्ञान है। और दम्भ का अभाव, दम्भ माने पाखंड, अपने को धर्मात्मा बतलावे या दिखलावे सिद्ध करे और होए नहीं तो वो दम्भ है। अपने को भगत बतला रहे किंतु भगत हो रहे नहीं, तो ये जो दम्भ है ये तो अज्ञान का बढ़ाने वाला है। और दम्भ का जो अभाव है वो ज्ञान का साधन है। तीसरी बात है अहिंसा, किसी की कभी किंचित मात्र भी हिंसा न करना उसका नाम अहिंसा। चौथी बात है शांति, शांति माने क्षमा, कोई अपना अपराध कर दे तो उसका बदला न चाहना, कोई अपने को गाली दे तो बदले में गाली न देना, और न प्रकार के मां नालिश करना और न भगवान के पास ही नालिश करना। अमुक आदमी मुझको तंग करता है उसको आप दंड दीजिए, और सोचे भी भगवान दंड दे रहे तो भी मन में ये इच्छा नहीं रखना, दूसरे पंचों के द्वारा भी उसको किसी प्रकार से दंड नहीं दिलाना, किसी भी प्रकार से उसको दंड नहीं दिलाना, उसी का नाम क्षमा है माने उसके अपराध को माफ कर देना। और आर जो है आर्ज माने सरलता, जैसा भीतर का भाव वैसा ही वाणी का और ऐसा ही व्यवहार, उसको कहते सरल। इसी का नाम जो है समझो कि आर्ज है। आचार्य उपासना, आचार्य जो है गुरु उनकी सेवा करना, आचार्य उपासना सोचम माने पवित्रता, वो बार और भीतर की पवित्रता, बार की पवित्रता सोचाचार और सदाचार। सदाचार का मतलब सबके साथ के माँ सत व्यवहार करना, स्वास्थ्य का त्याग करके उत्तम व्यवहार करना, ये सदाचार है। और सोचाचार माने जल और मिट्टी से अपने शरीर को साफ करना, बच्चों को साफ रखना, भोजन जो है तो पवित्र शुद्ध साफी भोजन खाना, ये भोजन की पवित्रता, ये सब शौचाचार है। भीतर में जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष आदि जो बहुत से विकार हैं और बहुत से पाप भरे हुए हैं, इससे हृदय जो है तो मलिन है, तो हृदय को शुद्ध करना ये भीतर की पवित्रता है। और आत्मा का निग्रह करना माने मन को अपने वश में करना, अभ्यास और वैराग्य से मन वश में होता है, यह बात भगवान ने गीता की 6 अध्याय के 35 के श्लोक में बतलाई। आचार्य उपासना सोतम तेरे आत्म निग्रह, और स्थिरता बुद्धि की स्थिरता, बुद्धि के भीतर के जिसके मां जो चंचलता है इसको स्थिर करना, तो ये ध्यान के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है। तो ये 9 बात पहले श्लोक में बताई, दूसरे में 3 बात इंद्रियार्थ से वैराग्य मन अहंकार एवं तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। संसार के जितने जो भोग हैं उनके विषय में वैराग करना, स्त्री पुत्र धन रुपया आदि जो संसार के पदार्थ हैं उनके विषय में जो आसक्ति है या शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जो संसार के जितने जो भोग हैं, उन भोगों के बीच के माँ राग जो है प्रीति उसका अभाव, उसका नाम है तो वैराग। इंद्रिया वैरागम, इंद्रियों के जितने जो अर्थ हैं, अर्थ माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इंद्रियों के विषय, उन इंद्रियों के विषय के बीच के माँ आसक्ति का अभाव, राग का अभाव, उसका नाम वैराग। और जन्म मृत्यु जरादि दुख दोषानुदर्शनम, जन्मने में दुख, मरने में दुख, वृद्धावस्था के माँ दुख और बीमारी अवस्था में दुख, इनमें दुख ही दुख भरा हुआ है। इस प्रकार से दुख रूप दोष का दर्शन करना या जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बीच के माँ दुख ही दुख देखना, इससे भी वैराग उत्पन्न होता है। अकर्तिरन भिषुंगे पुत्र दार गृह आदिशु, पुत्र दार गृह आदिशु, पुत्र जो है असली जो है घर है और आदि से रुपया आदि है, इन सब के बीच के माँ के अभाव, इन सब के माँ जो ममता है इसका भी अभाव, नित्यं नित्यं चरिष्टोपत्तिषु, इस और अनिष्ट की प्राप्ति के माँ समचित होना, मन के अनुकूल में और मन के प्रतिकूल के मां सम भाव होना, नित उसके मां सम रहना, तो तीन बात इसमें दो पहले में ऐसे मिलकर के पांच और नौ चौदह बात बतलाई। और मैत्रानंद योगी ने भक्ति अब विचार ली युग संसदी, वहाँ कहते मुझ परमात्मा में योग से अभिविचारणी भक्ति, जिसमें व्यविचार दोष न घटे, और वो कैसी हो कि अनन योग से, अनन योग उसका नाम है कि मुझ परमात्मा के बीच के माँ जो है आपने भक्ति करनी, और उस भक्ति के बीच के माँ सहकाम भाव नहीं घटे, जैसे पति पत्नी जो स्त्री होती है उसका अपने पति में ही प्रेम होता है, वो दूसरे पदार्थों में नहीं होता, और दूसरे पुरुषों में नहीं होता, दूसरे पुरुषों में यदि प्रेम हुए तो वो व्यभिचारिणी कहती है, तो उसकी भक्ति भी व्यभिचारिणी होती है, परमात्मा को छोड़ करके और दूसरे में अपना इष्ट करे तो वो व्यभिचारिणी भक्ति है, और कोई कामना न लेकर के न करे और वो भक्ति एक तार निरंतर हो, ऐसी जो भगवान के वहाँ भक्ति है वो अभिविचारणी भक्ति है, ऐसी अभिविचारणी भक्ति को अनन्य योग से करे, माना नित्य निरंतर भगवान के बीच के माँ निष्काम भाव से भक्ति करे केवल, और एकांत देश को सेवन करना, जैसे जन समुदाय नहीं हो ऐसा जो देश है एकांत और पवित्र देश उसको सेवन करना, वहाँ रह करके साधन कर, और जन समूह के माँ संसारिक मनुष्य उनके बीच के माँ प्रीति नहीं करनी। अच्छा, और फिर कहते हैं अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एत ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञान यदतो अन्यथा। अध्यात्म जो ज्ञान है जिसको हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, आत्मा विषय का जो ज्ञान है उस ज्ञान के मां नित्य शोषित एक सत्यनारायण परमात्मा के साथ दूसरी वस्तु नहीं है, इस प्रकार का जो परमात्मा के विषय का ज्ञान है, ब्रह्म के विषय का ज्ञान, उसके मां नित्य स्थित तत्व ज्ञान अर्थ दर्शन, तत्व ज्ञान का जो अर्थ जो है परमात्मा उसके स्वरूप का अवलोकन करना, उनका मनन करना, तो ये 20 जो बात है ये ज्ञान के साधन है, इस वास्ते इनका नाम ज्ञान है, इनके द्वारा ज्ञान होता है। एतद् ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञानं यदतो अन्यथा, और इसे जो विपरीत है वो ज्ञान है, जैसे आर्म क्या मैं आपको बताया कि जैसे मान की इच्छा करना ये ज्ञान का हेतु है, ऐसे ही दम हम पाखंड करना ये एक प्रकार से अज्ञान का बढ़ाने वाला है, हिंसा करना ये ज्ञान को अज्ञान को बढ़ाने वाला है। तो इसके जो जितनी बात विपरीत है उसे तो अज्ञान बढ़ता है, और जितनी बात बतलाई गई ये ज्ञान का साधन होने के कारण इसको ज्ञान कहा गया। जैसे शास्त्रों के बीच के माँ घी जो है वो आयु बढ़ाता है, तो घी का नाम आयुष कह गया। घी आयुष थोड़ा ही है किंतु आयुष की वृद्धि करने वाला है। ऐसे ही ये सब जो साधन बतलाए ये ज्ञान का साधन, इसलिए बताया ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। अभी ये बात कही कि ठीक है इससे ज्ञान होता है, वो ज्ञान क्या चीज है? तो परमात्मा के स्वरूप का जो यथार्थ ज्ञान है वो ज्ञान है। इसके लिए 13वें अध्याय के वहाँ भगवान ने बतलाया क्षेत्र क्षेत्र की ओर ज्ञान, क्षेत्र क्षेत्र की ओर ज्ञान, ये ज्ञान मत में, क्षेत्र क्षेत्र का जो ज्ञान है वो मेरे मत में का ज्ञान इस 13वें अध्याय के अंत में बतलाया। क्षेत्र क्षेत्र की ओर मंत्र ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षण से ये विदुर यांति ते परम, ये कहा कि क्षेत्र और क्षेत्र का जो अंतर है, अंतर माने भेद, क्षेत्र जो है वो क्षण मूल है, नाशवान है और जड़ है और दृश्य है और अल्प है, माइक है, और आत्मा जो है क्षेत्रज्ञ वो ज्ञाता है, चेतन है, नित्य है और दृष्टा है, साक्षी है, आनंदमय है। तो ऐसा क्षेत्र का स्वरूप है। ये समझना चाहिए कि इनका अतंत्र डिफरेंस है, वो एक प्रकार से जड़ है तो वो चेतन है, वो दृश्य है तो वो दृष्टा है, वो अल्प है तो वो महान है, वो दुख रूप है तो वो आनंद स्वरूप है। तो इस प्रकार से उनका परस्पर में अतंत्र डिफरेंस है। तो ये ज्ञान चक्षु से थी ये बात का जानना जो है, क्षेत्र क्षेत्र जो है मंत्रण ज्ञान चक्षुषा भूत प्रति मोक्षण से ये विदुर यांति ते परम, ज्ञान चक्षुषा ज्ञान चक्षु से जो जानते हैं वे परम को प्राप्त होते हैं, और भूत प्रकृति मोक्षण से भूत जो है प्रकृति, प्रकृति माने मूल प्रकृति और उसका जो सब कार्य है ये सब भूत, तो कार्य और कारण, कार्य और कारण से छूटने के उपाय को जो ज्ञान चक्षु से जानते हैं वे परम को प्राप्त होते हैं, यानी परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तो वो ज्ञान चक्षु क्या, कि ज्ञान के द्वारा यह बात समझे इससे छूटने के उपाय जो है, छूटने का उपाय जो है सो ज्ञान योग उपाय बतला है। तो ज्ञान योग की जो बात है विस्तार से गीता अध्याय 18 श्लोक 49 से लेकर के 55 तक प्रकरण बतला है, और भी गीता के वहाँ जगह जगह उसका प्रकरण बतलाया गया है। उसके अनुसार एक प्रकार से साधन करने से परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, और यथार्थ ज्ञान होने से उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यथार्थ ज्ञान होने से फिर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और सांख्य योग जो है उसका नाम भी ज्ञान योग है, सो बतला है। उस सांख्य योग के द्वारा भी यथार्थ ज्ञान ऐसा हो जाता है, और महात्मा जो पुरुष है उनके पास जाकर के और ज्ञान सीखने से भी वे ज्ञान का उपदेश करते हैं, उससे भी ऐसा समझो कि उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसके लिए भगवान ने अर्जुन को 4वें अध्याय में कहा कि अर्जुन जितने प्रकार के साधन है उनके माँ ज्ञान का जो साधन है ज्ञान योग वो सबसे बढ़ करके है, और वो ज्ञान जो है तो जाकर के महात्मा पुरुषों से समझ ले। तो ये कहा कि तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न से हुआ उपदेश संति से ज्ञान ज्ञानी न सतदर्शी नहीं। तत्व ने उस ज्ञान को तू अपने समझ जान, इससे कि तत्वदर्शी जो ज्ञानी है उनसे वे तुम्हारे को ज्ञान का उपदेश करेंगे, तो किस प्रकार से जाऊं कि उनको साष्टांग नमस्कार करके और उनकी सेवा करके और जिज्ञासु भाव से उनसे प्रश्न उत्तर करके उस ज्ञान से क्या होगा। तो यद ज्ञातवान पुनर्मोह मेवंग या शशि पांडव येन भूतान शेषेन द्रक्षसि आत्मनि अथो मई, उस ज्ञान के द्वारा तो फिर वो कुछ नहीं प्राप्त होगा जिस ज्ञान को जान करके की और तू इस वक्त में जो मोह को प्राप्त हो रहा है ऐसे फिर कभी मोह को प्राप्त नहीं होगा। और उस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण भूत प्राणियों को तू अपनी आत्मा के अंदर देखेगा और फिर मुझ परमात्मा के अंदर देखेगा। आत्मा के अंदर देखना क्या, सर्वभूतस्मात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शने, योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शी पुरुष है, आत्मा को सारे भूतों में और सारे भूतों को आत्मा के वहां अपने देखते हैं। योगयुक्तात्मा योग जो है परमात्मा, उस परमात्मा में जिसकी आत्मा युक्त है ऐसा जो पुरुष उसको योग युक्त आत्मा कहते हैं, यानी ब्रह्म के स्वरूप में जिनकी आत्मा अभिन्न रूप से स्थित है, यानी ब्रह्म के स्वरूप के वहां जिनकी स्थिति है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा जो अनुभव है सच्चिदानंद जो ब्रह्म है वो उसमें ऐसा एक रूप से समझता है कि ब्रह्म जो परमात्मा मैं ही हूँ। जैसे अज्ञानी आदमी दे आत्मवादी आदमी दे कोई आत्मा मानता है कि दे असो आत्मा है, इस प्रकार से ब्रह्म को आत्मा मानते हैं, यानी सत्यनारायण जो ब्रह्म है जो भूत पुरुष है ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म के स्वरूप में जिनकी अभेद रूप से स्थिति हो गई है ऐसा जो एक प्रकार से आत्मज्ञानी पुरुष है, किस प्रकार से कि सबको समभाव से देखता है, किस प्रकार सारे भूतों को माने सारे प्राणियों को अपनी आत्मा के अंदर अपने आत्मा के संकल्प के आधार अपने आत्मा के अंदर देखता है, स्वयं ब्रह्म बन करके और सारे भूत प्राणियों को अपने संकल्प के मां देखता है कि सारे भूत मेरी आत्मा के अंदर है और सारे भूतों के बीच के मां अपनी आत्मा को अधिष्ठान रूप से देखता है, उनके बीच के मां ये समझता है एक प्रकार से इनकी आत्मा मैं हूँ। जैसे एक प्रकार से आकाश जो है आकाश के मां बदलों का समूह और बदलों के समूह में आकाश, आकाश के अंदर जो बदलों का जो समूह एक अंश में है आकाश अनंत है, ऐसे ये सारे जो भूत प्राणी है मुझके एक अंश में है और आकाश को उसे बदलों में व्यापक देखता है, ऐसे सारे प्राणियों के अंदर अपने आप को व्यापक देखता है। या जैसे एक अधिष्ठान जो है, अधिष्ठान तो आप है, आप अधिष्ठान के मां ये सब संसार उसके मां आरोप है और संसार जो है उसके बीच के मां वास्तु के बीच के मां वहां अधिष्ठान है, इस प्रकार से देखे। उदाहरण के लिए जैसे कोई एक प्रकार से थी रज्जू माने कोई रस्सी है जेवड़ी है और उसके बीच के वहां जो सर्प है वो उसके वहां प्रतीत होता है भूल से है, तो अपना रज्जू और प्रतीत होता है सर्प, तो सर्प उसके वहां आरोप है वास्तु के बीच के वहां है नहीं, इसलिए आप संसार उस परमात्मा में यानी अपनी आत्मा के मां आरोप है। समझो कि संसार के स्थान के मां अधिष्ठान रूप से थी आप सुब्रह्म रूप से हैं, तो इस प्रकार से देखे ये अद्वैत के सिद्धांत से मायावाद की दृष्टि से ये बात पथराई। तो इस प्रकार से थी जो आपने यानी जो महात्मा है सो सारे प्राणियों को अपनी आत्मा के अंदर देखता है और उसके बाद में परमात्मा के अंदर कैसे कि परमात्मा के अंदर ऐसे किया सारा का सारा ब्रह्मांड उस परमात्मा के एक अंश के बीच में परमात्मा के संकल्प के आधार है। अथवा बहु नेते ने किंग जाते तो अर्जुन कृष्ण मेका जगत हे अर्जुन तुम्हारे को बोध जानने से क्या प्रयोजन है, या सारा का सारा ब्रह्मांड मुझ परमात्मा के किसी एक अंश के बीच के माँ है, मैं अपने एक अंश में सारे ब्रह्मांड को व्याप्त करके स्थित हूँ, अथवा सबको परमात्मा के रूप में देखता है। बहुनांग जन्मना मंगते ज्ञानवान मांग प्रबलते वासुदेव सर्वमिति स्वयं आत्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अंत के जन्म के माँ जो कुछ हुआ सब एक प्रकार से थी, परमात्मा को इस रूप है वासुदेव ही इस प्रकार से अनुभव करता है वह ज्ञानी महात्मा अति दुर्लभ महात्मा है। और कहते हैं यदा भूत पृथक भाव है मेक सर्व पश्यति तथेव विस्तार ब्रह्म संघ पद्धति तथा भूतों का जो पृथक पृथक भाव है एक ब्रह्म के ही अंदर देखता है और उस ब्रह्म से सबका विस्तार देखता है वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। यानी समझो कि सारी संसार का विस्तार ब्रह्म से देखना, ब्रह्म से ही सारी संसार हुई है और इनका जो पृथक पृथक जो भाव है उसको एक ब्रह्म के माने देखे। कैसे कि जैसे नाना प्रकार के जो गहने आभूषण जो हैं वे सब के सब आभूषण एक सोने में ही देखे, सोने के ही माँ ये सब है और सोने से ही उनकी सब की उत्पत्ति समझे। इस प्रकार से थी परमात्मा के अंदर सारे संसार को देखे और परमात्मा से ही सब की उत्पत्ति और विस्तार समझे तो वो ब्रह्म में प्राप्त हो जाए, या समझ ले कि भी एक ब्रह्म के स्वाद दूसरी वस्तु नहीं है तो वो भी सबके शामिल ही हो गए। इस वास्ते सभी आपने ब्रह्म ने प्राप्त हो गया, यानी ब्रह्म से सबको विस्तार और ब्रह्म से उत्पत्ति होकर के ब्रह्म से सबको विस्तार है। नाना प्रकार का भाव एक ब्रह्म के में देखे, जैसे नाना प्रकार का आभूषण है सो एक सोने में ही देखे और सोने से ही सब आभूषणों को विस्तार समझे। इस प्रकार से थी एक ब्रह्म से नाना प्रकार का भाव है, सब एक ब्रह्म ही नाना रूप से दिख रहा है और उससे ही सबकी उत्पत्ति होने से वो इसका सबका उपादान कारण है, वही निमित्त कारण है। एक ब्रह्म के स्वाद दूसरी वस्तु नहीं है, जब सबको ब्रह्म रूप से देखे तो सबके शामिल वो खुद ही है, इस वास्ते वो ब्रह्म में प्राप्त हो जाए। तो भगवान उस ज्ञान को जाकर महात्माओं से ठीक वह तेरे को उपदेश करें और उस ज्ञान को समझ कर करके फिर तुम मोह को नहीं प्राप्त होगा और सारे ब्रह्मांड को तू अपने आत्मा के अंदर देखेगा। और उसके बाद के बीच के माँ भगवान कहते हैं कि परमात्मा के अंदर मुझ परमात्मा के अंदर देखेगा। तो परमात्मा के अंदर देखना यह है कि यदा भूत पृथक भाव में समुपस्थिति अत्य विस्तार ब्रह्म संगते दादा, इस प्रकार से वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्म यह भवती ब्रह्म वेता जो है आखिर के माँ ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से थी ये ज्ञान की बात बहुत संक्षेप से आपको बतलाई। इसके पास चार प्रकार है, अद्वैत बात के चार प्रकार है खास करके। एक तो यह है कि जो कछु है वो परमात्मा ही है, और एक यह है कि ये जो कछु है तो नहीं है, एक परमात्मा ही है, सबका बाध्य करके एक परमात्मा को ये सो मानना। तीसरा यह है कि जो कुछ है सो मेरी आत्मा ही है, मैं ही हूँ। और चौथा यह है कि जो कुछ प्रतीत होता है ये नहीं है, मैं ही हूँ। सबके अभाव होने के बाद जो बचता है मैं ही हूँ। इस प्रकार से थी अपने अभ्यास लोग करते हैं। एक तो ऐसा कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि मैं ब्रह्म हूँ और तुम ऐसो वो ब्रह्म है, इस प्रकार से अभ्यास करें। और एक यो है कि जो कुछ है सब ब्रह्म ही है, और एक यो कि जो कुछ नहीं है सब एक ब्रह्म ही है। तो जो कुछ ब्रह्म ही है ये बात तो आपको बतलाई थी कि बहुनांग जमुना मंगते ज्ञानवान मांग प्रवर्तते वासुदेव सर्वीति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अंत के समय के बीच के बाद जो कुछ है सब परमात्मा ही है, इस प्रकार से ज्ञानवान अनुभव करता है और वह महात्मा अति दुर्लभ है। और भी इस प्रकार से बतला है कि भी जो कुछ है सो ब्रह्म ही है, जो कुछ जो है सो ब्रह्म ही है। ये बात जो है प्रकारांतर से भगवान बतलाते हैं कि ब्रह्मार्पण ब्रह्मवीर ब्रह्मागण ब्रह्मणाउतम ब्रह्म तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि न। गीता अध्याय 4 श्लोक 24 में समझो कि यज्ञ जो है वो भी असो ब्रह्म है, अर्पण जो सर्वा है वो भी असो ब्रह्म है, और जो अग्नि जिसमें आहुति दी जावे वो भी असो ब्रह्म है, और आहुति है वो भी असो ब्रह्म है, आहुति देने वाला जो पुरुष है वो भी असो ब्रह्म है। इस प्रकार के अभ्यास से ब्रह्म कर्म समाधि पुरुषों के द्वारा ब्रह्म ही प्राप्त होने के युग है। तो ऐसा साधन करने वाला पुरुष जो है आखिर में ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। और बहिरंत से भूताना मतरंग चरम एवच, चराचर जो भूत प्राणी है उसके बाहर और भीतर सब दिवा के बीच के वहाँ ब्रह्म तो परिपूर्ण है। जैसे कोई अपने बर्फ का ढेला जल में डाल दिया जाए तो उसके चारों तरफ बाहर भीतर जल ही जल है, और वो बर्फ का जो ढेला है वो भी जल ही है। तो इसी प्रकार से यह जो संसार है इस संसार के बाहर और भीतर परमात्मा ही है। चराचर जो जगत इसके बाहर भीतर तो परमात्मा परिपूर्ण है, बाहर भीतर ही नहीं चराचर जो प्राणी है वो भी असो ब्रह्म ही है। तो जो कुछ सब ब्रह्म ही है, एक तो इस प्रकार को यो साधन। दूसरा यो है कि ये सब कुछ नहीं है, इन सब के नाश होने पर जो बच जाता है वो असो परमात्मा है। परस्पर समात भावो न्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातन, ये सब सर्वेषु भूतेषु नश्यतु न विनश्यति। परस्पर समात भावो अन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातन, ये जो एक अव्यक्त है प्रकृति का सूक्ष्म स्वरूप उसको अव्यक्त कहते हैं, और इस प्रकृति के सूक्ष्म स्वरूप से दूसरा और एक सनातन अव्यक्त है, पर भाव वाला एक सनातन। प्रकृति का सूक्ष्म स्वरूप सनातन नहीं है, और वो सनातन है सदा से हुए और सदा ही रहे, उसको सनातन कहते हैं, वो है परमात्मा। तो सारे भूतों के नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता। तो इससे ये ध्वनि निकलती है कि प्रकृति का जो स्वरूप है सूक्ष्म जो स्वरूप है उसका विनाश हो सकता है, सबका विनाश हो सकता है, किंतु सबके विनाश होने पर भी एक सनातन जो अव्यक्त भाव है वो कायम रहता है। तो इससे सबका बाध्य करके के अरुष की कायमी बतराई। अथवा और कहते हैं समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्।